Talk of the Town with Amit Khuwa. That's me.
नमस्कार विशाल भाई, मेरे साथ है विशाल राठौड़। विशाल राठौड़ नाम आपका बहुत जबरदस्त नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही? हाँ, विशाल भाई स्टैंड अप कॉमेडियन है और अलग अलग कॉमेडी टाइप्स को एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी गुजरात कॉमेडी इंडस्ट्री में। तो आज हम लोग स्टैंड अप टिप्स करके जो कैफे कॉमेडी के पेज पे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, जिसका इंस्टा और फेसबुक हैंडल कैफे कॉमेडी वर्कशॉप्स है विद एस, वहां पर हम लोग स्टैंड अप टिप्स रखते हैं। तकरीबन 60 वीक हो गए आपको स्टैंड अप टिप्स रखते हुए, मतलब एक साल से ज्यादा। तो वहां पे कुछ टिप्स हैं जिसके बारे में आज विशाल भाई मेरे पास आए हैं, तो अपन डिस्कस करेंगे। विशाल भाई, वी हैव द कंप्यूटर इन फ्रंट ऑफ अस, तो ये सारी टिप्स है, उसमें से अपन कोई भी टिप्स जो आपको ऐसा लगे कि दिस इज अ गुड टू डिस्कस और इसके ऊपर आपके पास भी कुछ पॉइंट है कहने को, तो वो पॉइंट आप मेरे को पॉइंट आउट करिएगा, तो अपन उसके ऊपर बात करते हैं। ये एक तो सामने ही पड़ा है, देखो ये टिप मेरे को कब से दिमाग में बैठा, बींग क्लेवर इज फनी, बींग स्टूपिड इज फनियर। इसका मतलब मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ, फिर उसमें आप अपना कुछ एक्सपीरियंस या आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो अपने इवेंट्स में तो देख के मुझे बताइए। एक होता है कि बींग क्लेवर इज फनी, एक आदमी ऐसे इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करे ना, वो स्मार्ट बनने की कोशिश, हाँ तो वो फनी लगता है। पर अगर एक आदमी ऐसे बुद्धू बनने की कोशिश करे ना, तो वो फनियर लगता है, मतलब और ज्यादा फनी लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा मैं वो बच्चे वाला कैरेक्टर जैसा करता हूँ तो ज्यादा मजा आता है, या तो फिर सूरत भाई अपने मिस्टर सूरत बना लिया है, वो सबको फनी लगता है। उसका रीजन यही है कि वो अरे यार ऐसा पैसा ऐसा ऐसे बच्चे बन जाते हैं स्टेज पे, भोलापन लाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके जोक्स में भी ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि यार एकदम दिल से बोलते हो आप, तो वो स्मार्ट होने की जगह पे अगर वो भोलापन चेहरे पे आ रहा है तो ज्यादा मजा आता है। आपको क्या लगता है, आप भोलापन में बोलते हैं या स्मार्ट बोलते हैं?
भोलेपन में बोलता हूँ, कुछ भी बताओ मैं बोल ही देता हूँ।
अपने में सबसे स्मार्ट जोक बोलता है ऐसा कौन लगता है आपको अपनी टीम में?
स्मार्ट जोक,
हाँ
तो वो ही लगता है अपना
सोहम।
हाँ
सोहम,
क्या आधे जोक तो मुझे समझ में नहीं आते, इतने स्मार्ट होते हैं
सोहम वगैरह।
हाँ
वो वीट करता है ज्यादातर, ऐसी चीज से करता है कि जो समझ में आने में थोड़ा देर लग जाए अपने को। राइट, एक ये टिप है, टिप नंबर 56 है, हाँ 56 है, कि अ गुड बिगिनिंग विल अवेक देम, अ गुड एंड यू आर गोइंग टू बी रिमेम्बर्ड फॉर इट। जैसे कि कोई अच्छा शुरुआत करते हैं किसी स्क्रिप्ट की, अच्छी शुरुआत आप करते हैं,
हाँ
तो वो जाग जाती है पब्लिक, मतलब नींद में तो जाग जाती है, मतलब कि उसको लगता है, भरोसा बैठ जाता है कि ये आदमी कुछ अच्छा करेगा, वो भरोसा बैठता है। पर अगर अच्छा एंड नहीं है अपने पास तो स्क्रिप्ट का मतलब ज्यादा रहता नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा एंड नहीं है ऐसे बीच में खाली छोड़ दिया तो उस टाइम पे मजा आया, लेकिन 2-3 हफ्ते बाद उसको मिलोगे, मैं विशाल विशाल भाई हाँ उसमें थे आप, स्टैंड अप कर रहे थे लेकिन याद नहीं है कौन सा किया था, वैसा हो जाएगा। पर एक अच्छे वाले एंड पे अगर छोड़ा है बड़े एंड पे तो उनके दिमाग में वो याद रहेगा, अरे वो लास्ट में वो आया था, क्योंकि हमेशा अपने को वो लास्ट वाला सेंटेंस याद रहता है। बड़े बड़े कॉमेडियंस में भी एक बड़ा जोक होता है, वो अपने को वीडियो खत्म होने के बाद या शो खत्म होने के बाद वो बड़ा जोक
याद रह जाता है,
याद रह जाता है अपने को। आप एंडिंग कैसे करते हैं स्क्रिप्ट्स में, जनरली ऐसा सोचते हैं कि जोक आना चाहिए एंड में या इसके बाद कुछ सूझा नहीं तो छोड़ दिया, ऐसे कैसे एंडिंग करते हैं आप?
मैं तो एक्चुअली छोड़ ही देता था, लेकिन अभी इस बात का ध्यान दूंगा टिप्स के हिसाब से।
बाकी आप जैसे स्क्रिप्ट खत्म हुई तो छोड़ दिया वैसे?
हाँ, मतलब जोक जैसे 5 जोक है, 5 हाँ, जोक लेके अपने परफॉर्म करने गए,
हाँ,
तो 5वां नहीं चला तो नहीं फनी नहीं हुआ, फिर भी गिव कर दिया ऐसा।
राइट, कुछ और एक्स्ट्रा ले जाके रखना चाहिए वहां पे कि जो
हाँ
आखिरी मोड पे आ जावे हाथ में।
ये टिप्स अब नेक्स्ट टाइम
जानने को मिलता है,
ये टिप्स ये सीखने को मिलेगा कि मींस कि अब की बार जाऊंगा तो लास्ट में एक टाइट पंच होना चाहिए।
एक और ये टिप थी, डू यू थिंक यू नीड अ जोक, जस्ट ट्राई रिस्पॉन्डिंग अ हैकलर विद अ साइलेंट स्माइल। अभी हैकलर बताया ना आपको,
हाँ
वो बीच में जो टांग अड़ाता है वो परेशान करता है, वो आदमी जो बीच में बोलता है उसको हैकलर बोलते हैं। वो हैकलर ज्यादातर लोग क्या करते हैं अपने करियर के शुरुआत में, उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं, मतलब जोक बनाने की कोशिश करते हैं, ये सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। पर अगर वो अपने से ज्यादा स्मार्ट निकला तो पप्पू हो जाएगा, तो तो फिर वहां पे क्या करना चाहिए कि एक स्केल पे तो उसको खाली साइलेंट स्माइल देनी चाहिए, लाइक एक बार ऐसे उसको चालू शो में ऐसे रोक के परफॉर्मेंस, उसको ऐसे
घूरने का,
घूर के स्माइल करने का, कि हो गया तेरा, ऐसा मन में बोले अपन के हो गया तेरा अभी मैं बोलूं तो शायद एक शब्द बोलने की जरूरत भी ना पड़े। आपने किया कभी हैकलर एक्सपीरियंस किया है कभी?
नहीं
अच्छा है अपने शो में एक दो बार हैकलर्स आए हुए हैं, मानो वो शेक मेकर वाले छोटे इवेंट्स पे एक दो बार हैकलर्स आए हुए हैं।
शेक मेकर
आप थे तब पे? एक आदमी परेशान कर रहा था सबको
ना,
ये दो तीन बार ऐसा हो चुका है वहां पे। तो कई बार फिर अपने को जोक का रिस्क नहीं लेने का, उसका जोक करने का, उसमें अपना जोक हो गया तो साला और लोचे हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि उसको खाली साइलेंट स्माइल दे, ऐसे रुक के कि बेटा बस अभी, ऐसा मन में बोल दिया उसको
भाई तू बाहर में,
तू बाहर में। आहा, ये अपने अभी बात हुआ, ये पॉडकास्ट से पहले ही अपना इसके ऊपर बात चल रहा था कि सेल्फी वाली पोस्ट अच्छी लगती है, कोई अपने साथ सेल्फी क्लिक करके फोटो डाले, पर वो इंस्टाग्राम के डीएम में या फेसबुक के मैसेंजर पे आता है कि द शो वाज हिलेरियस, यू वर ऑसम, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि सेल्फी आदमी सिर्फ उसी दिन के लिए नहीं लिया है सेल्फी, जैसे मान लो कि एज अमित खुआ मैं स्टेज पे गया और मैं बहुत खराब परफॉर्म किया, फिर भी खत्म होने के बाद मेरे साथ पब्लिक सेल्फी तो लेगी, क्योंकि वो आज के परफॉर्मेंस के लिए सेल्फी नहीं ले रहा है
पिछले,
वो तो उसको तो अमित खुआ पता है कि यार ये अच्छा आदमी है, बहुत टाइम से इसको देख रहे हैं, अच्छा परफॉर्मर है, तो वो ओवरऑल अगर आज मेरा बुरा भी गया तो वो तो सेल्फी लेके जाएगा घर पे। पर वो जो मैसेज आता है कि आज का परफॉर्मेंस जोरदार था, आज का परफॉर्मेंस गजब था, हिलेरियस था, वो सिर्फ आज के परफॉर्मेंस के लिए आता है, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है अपने को। और वैसे भी सेल्फी वाला अपने को खाली दो मिनट के लिए उस टाइम पे अच्छा लगा कि चलो मेरे साथ भी कोई फोटो खिंचवाया, लेकिन अगर रात को शो खत्म हो गया 10:30 को, 11 बजे आप घर पहुंच गए और 11:30 को आप इंस्टाग्राम खोलो और वहां पे वो मैसेज आया हुआ पड़ा है, तो मस्त पूरा पूरी रात पूरा दिन मस्त जाता है कि यार
वही मैसेज बार बार पढ़ते
हैं, हाँ अच्छा लगता है वो बहुत ज्यादा। तो किसी भी कॉमेडियन के लिए अप्रिशिएशन इज ऑलवेज बेटर देन द लाइक अफेक्शन और एनीथिंग लाइक सेल्फीज और एनीथिंग। तो वो फैन मोड सबको अच्छा लगता ही है, लेकिन अप्रिशिएशन उससे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप कॉमेडियन को मिलने और सेल्फी लें उससे ज्यादा ये उसके लिए बेटर या ये उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, आज क्या जोक्स थे,
वासु दीक्षित के साथ,
हाँ अभी वही था, अच्छा किया था। तो वो उसको सेल्फी भी मिली थी और उसको अप्रिशिएशन भी मिला था, पर उसको अप्रिशिएशन अभी तक याद होगा सेल्फी से ज्यादा भी, ऐसा है। ये मेरा फेवरेट टिप था एक्चुअली, वन ऑफ माय फेवरेट टिप, हाँ। इसमें ये बोलता है कि फेवरेट जोक्स डिडंट वर्क एंड यू स्टिल हैड अ ग्रेट शो। ये लिखा ना था मैंने एक्सपीरियंस एकदम दिल से लिखा था ऐसा कि फेवरेट जोक्स डिडंट वर्क एंड यू स्टिल हैड अ ग्रेट शो। वेल दैट्स व्हाई सेल्फनेसनेस हेल्प्स। एक होता है कि अपन 50 जोक में अपन 50 जोक लेके गए स्टेज पे, एक घंटे का शो है 50 जोक लेके गए अपन, उसमें से दो जोक अपने बहुत दिल से फेवरेट होते हैं, बाकी के 48 चलते हैं और वो दो सारे नहीं चलते। जो दिल से बहुत फेवरेट वाले हैं ना कि ये बोलेंगे ना तब तो मेरे को मजा आएगा, और वो दो अगर फ्लॉप हो जाए तो आपके हिसाब से वो शो अच्छा शो है या बुरा शो है?
अच्छा शो नहीं हो मेरे हिसाब से, बाकी के नहीं चलते तो वो चलता, लेकिन वो दो चलने चाहिए। मेरे साथ भी कभी कभार ऐसा हो जाता है, बोले लगता है पब्लिक हंसो यार,
ये फेवरेट बहुत मेहनत से लिखा था ये वाला। पर यहाँ पे ये टिप में ये सिखाया जाता है कि चलेगा यार, अभी अल्टीमेट देखो ना कि 48 चले,
हाँ।
आपका वो दो अगर आपके फेवरेट है तो उसको छोड़ना मत,
हाँ। नेक्स्ट टाइम चले,
ट्राई करते रहना,
हाँ।
पर फिर उसके लिए मूड खराब नहीं करना चाहिए कि यार दो नहीं चले। ये मेरे साथ होता था पहले कि 1.5 घंटे के शो में 4-6 जोक ना चले और वो मेरे अच्छे फेवरेट हो, पब्लिक खत्म होने के बाद स्टैंडिंग ओवेशन भी देती थी ना, 1000 आदमी का ऑडिटोरियम खड़ा भी होता था ना, तो मेरे मूड नहीं रहता था, तो फिर अपनी टीम वाले लोग या ऑर्गेनाइजर या क्या हुआ यार क्यों मुंह लटका के बैठे हो यार, मैं नहीं यार वो वाला जोक वो मुको वाला नहीं चला यार, बोले तेल लेना क्या मुको वाला जोक क्या है, तुम सैंडिंग ओवेशन देखो ना। तो कई बार अपन वो फेवरेट जोक के इन्फ्लुएंस में अपन शो की सक्सेस को एंजॉय नहीं करते हैं। और दूसरा है कि पब्लिक के लिए थोड़ी फेवरेट है, वो तो अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, पब्लिक को तो बोले 50 में से 48 चले मतलब सुपर डुपर हिट शो हो गया। तो ये थोड़ा सेल्फलेसनेस मतलब कि थोड़ा खुद के बारे में ना सोचते हुए प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि चलो शो तो अच्छा गया है कम से कम। एक बहुत अच्छा ये भी है कि दिस इज़न्ट, यहाँ पे कोई गुड ऑडियंस या बैड ऑडियंस नहीं होता है। अपन बोलते हैं ना ऑडियंस अच्छी है ऑडियंस बुरी, ऑडियंस ऑडियंस होती है, वो वहां पर सुनने आए और तुम वहां पर परफॉर्म करने आ रहे हो, खत्म बात। हाँ ऐसा हो सकता है कि ये ऑडियंस कम रिस्पॉन्स देती है, ये ऑडियंस सपोर्ट नहीं करती है, या फिर ये ऑडियंस इस तरह के जोक्स पे ज्यादा हंसती है, उस तरह के जोक्स पे कम हंसती है, ये सब हो सकता है। मतलब कि क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ ऑडियंस हो सकता है कि ये ऑडियंस का जो प्रकार है, ये ऑडियंस का जो मिजाज है वो दूसरी वाली ऑडियंस से अलग है, पर खराब ऑडियंस है या बहुत अच्छी ऑडियंस है ऐसा नहीं होना चाहिए दिमाग में, क्योंकि आपके दिमाग में अगर पहले एक मिनट में बन गया कि यार ये ऑडियंस बहुत खराब है, तो फिर आप वो परफॉर्म करते टाइम भी मूड में नहीं रहोगे कि यार ये है ही नहीं अच्छी ऑडियंस, क्या मेहनत करने का इसमें। या तो फिर अगर यार ये बहुत मस्त ऑडियंस है, क्या विशाल भाई में जोक पे हंसे थे, फिर अमित भाई स्टेज पे जाके कुछ भी करेंगे तो फिर नहीं हंसेगी पब्लिक। तो गुड ऑडियंस बैड ऑडियंस का ख्याल दिमाग से निकाल देना चाहिए अपने को। आपने कुछ टिप्स के नंबर लिखे थे जो आप शॉर्टलिस्ट किए थे वो, हाँ ये है ना, उसमें से भी कुछ टिप्स देखते हैं। ये था एक तो टिप नंबर 5। ओके, टिप नंबर 5 इज ऑब्जर्व एवरी कॉमिक बट कॉपी नन ऑफ देम। अब ऐसा है कि इंडस्ट्री का आइडिया लेने के लिए कि इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है, कौन से कॉमेडियंस मार्केट में काम कर रहे हैं अभी, या फिर एक जोक को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, अरे यार ये जोक इतना अच्छा है, मैं परफॉर्म करता तो ऐसे करता, लेकिन यार ये करुणेश तलवार इसको बहुत अलग तरीके से किया, या ये वाला जोक अगर मेरे पास होता तो मैं अलग करता, लेकिन ये कनन गिल इसको क्या अलग तरीके से किया। तो वो वैरायटी ऑफ जोक, वो स्टाइल ऑफ जोक देखने के लिए इंडस्ट्री ऑब्जर्व करना तो बहुत जरूरी है, और रेगुलर बेस पे हर कॉमिक का काम चेक करते तो अपने को भी पता चलता है कि ये किस तरह से लोग ग्रो हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहा है। लेकिन कभी भी अपने को किसी कॉमेडियन की स्टाइल को कॉपी नहीं करना है,
कॉपी नहीं करना,
इसलिए नहीं करना है कि वो उसका स्टाइल है, उसके ऊपर मैच करता है। अपन करेंगे दूसरा कारण के लिए, दूसरा करुणेश तलवार नहीं बनना है, अपने को पहला विशाल राठौड़ बनना है। और किसी और की कॉपी करने में, कॉपी से मेरा मतलब है कंटेंट नहीं, स्टाइल,
स्टाइल
भी कंटेंट तो कॉपी नहीं ही करना चाहिए, पर स्टाइल तक कॉपी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी स्टाइल में बोलने की कोशिश करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं अपन वो एक्टिंग कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, अपना वो मूड नहीं आएगा,
ऐसा लगे किसी की नकल कर रहे हैं।
हाँ, और अपना मूड नहीं आएगा क्योंकि अपना ध्यान वो स्टाइल कॉपी करने में ज्यादा जाएगा। पर अगर विशाल भाई की स्टाइल में कॉपी कर रहे हैं तो शायद वो आई गेस कि ज्यादा मजा आएगा विशाल भाई को। तो ये भी है एक पॉइंट। एक और था, गेटिंग अ लाफ डजंट मेक इट्स एंड। मान लो कि किसी एक जोक पे पब्लिक हंसती है,
हाँ।
तो अपने को क्या लगता है कि यार ये पब्लिक ने हंस लिया, जोक खत्म। एक्चुअली वहां पे कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक हंसती है अगर, तो आपके पास आफ्टर पंच होना चाहिए, या तो आपके पास एक फॉलोअर जोक होना चाहिए, या आपके पास फॉलोअर जोक से एक और जोक होना चाहिए उसी सब्जेक्ट के ऊपर, उसे बात के ऊपर। क्योंकि जब हंसती है पब्लिक तब थोड़ा कुछ बोलते हैं तो और ज्यादा हंसने लगती है। आपने देखा होगा कि आपको अथांग वाला जोक बोलते हैं, उसके बाद पब्लिक हंसती है तो अपन बोल देते हैं बोलो आओ करे से, तो आफ्टर पंच में भी हंसने लगते हैं। तो कभी भी कोई बड़ा लाफ्टर स्टेज पे अपन परफॉर्म कर रहे हैं और एक लाफ्टर मिला, तो उसको कभी भी एंड नहीं समझने का कि ये लाफ्टर मिला ना, अभी ये अपॉर्चुनिटी का यूज करूंगा, मेरे पास इसके बारे में एक और सेंटेंस है।
ओके,
तो ऐसा है जनरली आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो वैसा लिंक ही होता है ना, एक ही सब्जेक्ट पे 3-4-6 जोक्स होते हैं ना। तो आप मान लो पहले जोक पे मिल गया लाफ्टर तो बाकी के 5 बोलने का मजा आता है फिर। ये तुम कंसेप्ट समझ गए, मेरी बात समझ गए हो, अभी इसके ऊपर मेरे पास 5 और है, तो वो बोलने का मजा डबल हो जाता है यार। इससे आप क्या समझते हैं, कॉमेडी इज अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। इसको मैं हिंदी में बनाऊं तो, या गुजराती में हिंदी में इसको समझाने की कोशिश करूं तो, अपने आपका एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब खुद जो कहना चाहते हैं वो चीज पेश करना, उसको कॉमेडी कहते हैं। इससे आप क्या समझते हैं,
मतलब अच्छे से मस्ती हो परफॉर्म करने का? ऐसा मैं कभी परफॉर्म करता हूँ ना, तो मतलब पहले बात अपने वो कंटेंट याद होना चाहिए, वो देख के बोलने में मजा
नहीं आता ही नहीं है।
हाँ, मजा नहीं आता देख के बोलने में, मजा नहीं आता,
राइट।
और उसमें प्लस इसमें टाइम भी चला जाता है, जैसे 5 मिनट का अपने को टाइम लिमिट है तो 2 मिनट तो देखने में चला जाता है, इसके लिए कंटेंट याद करने,
और उसमें उसमें अपन मूड में भी नहीं आते, वो देखने में ध्यान वो रोबोट जैसा हो जाता है,
लिंक टूट जाती है बार बार,
वो रोबोट जैसा हो जाता है कि फिर देख देख के पढ़ रहे हैं खाली, फिर ऐसा लगता है खाली ये शब्द सुना रहा है, मतलब जो लिख के लेके आया है घर से भाई वो खाली बोलने के लिए बोल दे रहे हैं। तो सेल्फ एक्सप्रेशन से मतलब यही था कि आपने जो डायरी और पेन लेके जो जोक्स लिखे हैं कि यार ये लैपटॉप पे एक जोक लिखा है, डायरी या पेन पे एक जोक लिखा कि ये परफॉर्म करूंगा ये फनी है, लेकिन अगर उस जोक से आपका कोई लेना देना नहीं है तो वो जोक पब्लिक को फनी नहीं लगेगा। आपका लेना देना होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बोले कि यार ये मुंबई जाते हैं, मुंबई में जो रहते हैं तो कैसी स्ट्रगल होती है, उसके ऊपर आप जोक लिख रहे हैं क्योंकि सब लिख रहे हैं, आपने भी लिखा, तो वो जोक आपको आपको फनी लगेगा लेकिन पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि आपने कभी मुंबई में रह के कुछ किया नहीं है स्ट्रगल। आप अहमदाबाद में हैं, आप पहले यूपी थे, यूपी से अहमदाबाद, तो अहमदाबाद और यूपी के बारे में बात करेंगे तो आपको मजा आएगा कि अहमदाबाद में भी स्ट्रगल है भाई, मुंबई वाले अकेले स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। मैं बताता हूँ मैं क्या स्ट्रगल करता हूँ, ऐसे करके अगर आप बात करेंगे तो वो दिल से निकलेगी बात।
हाँ, दिल से।
क्योंकि वो किया हुआ है, वो फील किया हुआ
है,
और वो बोलने में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इस पे कौन सा एक्सप्रेशन या कौन सा भाव ला, वो भाव अपने आप आएगा।
जब मैं वो गुजराती वाला परफॉर्म करता हूँ ना थर्ड वाला, तो भाव अपने आप आता है।
ये वो हुआ था मेरे साथ। तो वो कॉमेडी करनी बेटर है, सेल्फ एक्सप्रेशन वाली, कि जिसमें जो चीज अपन बोल रहे हैं वो हम सोचते हैं, वो हम करते हैं, वो हमने फील की हुई है, उसके बारे में हम जानते हैं कि कैसा लगता है। अगर उस चीज के बारे में कॉमेडी कर रहे हैं तो वो सुनने में भी मजा आता है और वो बोलने में भी बहुत मजा आता है कि सुनो यार हुआ था ऐसा, मैं सच्ची बता रहा हूं ऐसा है। फिर अपना ये भी था कि परफॉर्म लाइक टॉकिंग टू द ऑडियंस, कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप उनसे बात कर रहे हैं, उनको ऐसा लेफ्ट आउट फील नहीं होना चाहिए कि यार ये तो रोबोट है, बोले जा रहा है, ऐसा नहीं। उनको लगना चाहिए कि भाई उसके बाद क्या हुआ तुमको मालूम, ऐसे करके किसी एक के सामने इशारा करो या उसके बाद ऐसा आपको क्या लगता है,
क्या
नहीं आपको क्या लगता है क्या हुआ, ऐसे पूछ नहीं रहे लेकिन ऐसे दोस्त को नहीं बोलते तेरे को क्या लगता है, तेरे को मालूम मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा बात करनी है उसको, पूछना नहीं है आपको क्या लगता है बताइए, पूछेंगे तो फिर तो ऑडियंस इंटरेक्शन हो जाएगा। पर ऐसे अपन नहीं बोलते कि आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, मतलब वो जवाब दे उससे पहले आगे बढ़ गए, लेकिन उसको एक सेकंड के लिए उसको कैसा लगेगा कि यार ये मेरे से पर्सनली बात किया, कि मन हमारी बातों कर दो तो यार अभी तो ऐसे सब में ऑडियंस में अगर 25-50-100 लोगों का ऑडियंस है तो 2-4-6 लोगों के साथ आपने किया ऐसा तो दिल फील वेरी गुड, उनको लगेगा कि अपन कनेक्ट कर रहे हैं भाई साहब के साथ। Get yourself from emulation to creation. Yes, emulation and creation. अभी अपने अभी एक दो एक टिप के पहले एक बात हुआ कि किसी भी कॉमेडियन को कॉपी नहीं करना है,
हाँ.
अपना खुद का स्टाइल बनाना है, लेकिन जब तक अपने को पता नहीं चलता कि अपना खुद का स्टाइल क्या है तब तक भी किसी को कॉपी तो नहीं ही करना है, पर तब तक अलग अलग स्टाइल में बोलने की कोशिश करनी है कि यार एक काम करता हूँ ना, मैं एकदम उछल कूद करके एकदम मूड में मस्ती में बोलने की कोशिश करता हूँ, मेरे को कैसा लगता है पब्लिक को कैसा लगता है,
सही।
तो उस दिन पूरा मतलब फुल एनर्जी में मूड में क्या चाल भाई लोग, मैं ऐसा मस्ती में किया। दूसरे दिन आपने सोचा कि काम करता हूँ आ जाए ना, ऐसे सोच समझ के बोलता हूँ एकदम, ये मेरे साथ क्या हुआ मालूम तुमको मैं बताऊँ, यार ऐसा नहीं होता है यार, ऐसे सोच समझ के बोल रहा हूँ सारी चीजें, ऐसे अलग अलग स्टाइल्स ट्राई करते रहने जब तक अपने को अपना स्टाइल पता। एक दिन ऐसा होगा कि अपन दिल से बोलेंगे कुछ एक स्टाइल में 5 मिनट और पब्लिक पागल हो जाएगी, फिर अपने को खत्म होने के बाद लगेगा कि यार क्यों इतने पागल हुए, क्या था इतना तो बड़ा यार जोक में, तब पता चलेगा कि लोगों को मेरा ये स्टाइल
पसंद
आता है और मेरे खुद को भी ये स्टाइल पसंद है, दोनों चीजें जरूरी है, लोगों को भी पसंद आता है और मुझे भी पसंद आता है। बस एक बार वो क्रैक कर लिया, एक बार वो पता चल गया 4 महीने 6 महीने 8 महीने में, तो उसके बाद फिर वो स्टाइल नहीं देखना पड़ेगा, फिर खाली जोक लिखा याद किया और स्टेज पे गए, बाकी बोलना कैसे है ना वो फिर अपने को मालूम पड़ जाता है कि भाई आज तुम्हारा फोड़ देगा।
लोगों को मेरा बचपन ज्यादा पसंद आता
है। हाँ
हाँ,
तो वो आपका स्टाइल है।
एग्जैक्टली।
धा 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 धा। एक है कि स्टॉप जजिंग योर सेल्फ थ्रू ऑडियंस, इट्स ऑलवेज यू हु इज मोर जजमेंटल। ये जो अपन सोचता है ना बहुत ज्यादा विशाल भाई के, आज ऑडियंस ऐसी है, आज मेरा स्क्रिप्ट नया है, आज मेरे से बाकी वाले परफॉर्मर है वो स्ट्रांग है, आज की जगह है ना इसमें बहुत इको आता है, साउंड में आज कम मजा है, ये सारी चीजें अपन जज करते हैं ना, ये अपन खुद करते हैं, ऑडियंस के दिमाग में इतना कुछ होता भी नहीं है, वो इतना नहीं सोचते हैं, वो खाली आए हंसने के लिए, उसको अच्छा वेन्यू छोटा है, इको भी आ रहा है, साउंड भी है, ये परफॉर्मेंस भी है, अच्छे स्क्रिप्ट अच्छे से याद किया होगा कि नहीं किया होगा, ये सारी चीजें ऑडियंस थोड़ी सोचती है।
सही।
अपन क्या बोलते हैं कि ऑडियंस जजमेंटल है, ऑडियंस बहुत जज करती है, अरे ऑडियंस जज नहीं करती, हम खुद को जज करते हैं, हम खुद
सही।
वो हार भी अपन मन में ही मान लेते हैं, जीत भी अपन मन में ही मान लेते हैं चालू होने से पहले खेल, वो दोनों फिल्म में बताया जा रहा कि हम मैच कब आ रहे थे, बोले मानो धोनी फिल्म देखा है आपने, उसमें बोलता है धोनी युवराज को देख के जब सारे प्लेयर्स परेशान हो जाते हैं, मतलब मैच कब आ रहे थे, फील्ड पे आ रहे थे, बोले नहीं वो पिछली रात को युवराज को देख के ही हार गए थे हम लोग। तो वो वाला मेंटर है कि अपन वो माहौल देख के अपन खुद जज कर लेते हैं कि आज है ना ये ऐसा माहौल है, पर वो खुद जज करते हो। अपन नाम किसका देते हैं, मतलब ब्लेम करते हैं ऑडियंस पे, ऑडियंस बहुत जजमेंटल थे। अरे ऑडियंस जजमेंटल नहीं थे मेरे भाई, तुम खुद जजमेंटल थे, एंड इट इज यू हु वाज जजिंग योरसेल्फ थ्रू द ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस जज नहीं करती है, वो तो हंसने आए यार, वो तो क्यों नहीं हंसेंगे, उसका तो पैसा दिया है उसने। ये अपन जो बात किया उसके बारे में ही है अगला टिप, कि मीन व्हाट यू से इट ऑल दैट मैटर्स इन स्टैंड अप। जो अपन मानते हैं वो बोलना चाहिए, और जो बोलते हैं वो मानते होने चाहिए। जैसे कि कोई मुझे बोले कि प्राइम मिनिस्टर पर जोक करें, मैं क्या, एक ओपन माइक अपन हेड कर रहे थे, उसमें एक रैंडम सा बंदा है, प्राइम मिनिस्टर पर जोक कर सकते हैं क्या, मैंने कहा तुम क्या बोलोगे, बोले मैं फेकू बोलूँगा उनको, मैंने कहा तुम मानते हो कि वो फेकू है, बोले हाँ मैं मानता हूँ, मैंने कहा फिर ठीक है बोलो। अगर तुम प्राइम मिनिस्टर को फेकू बोल रहे हो, है डेमोक्रेसी में तुम मानते हो, तुम बोल सकते हो, लेकिन तुम मानते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम नहीं मानते हो और तुम बोल रहे हो, तो ना तुम्हारे चेहरे पे वो चीज़ दिखेगी, तुम उसको ज़्यादा ब्रूटली बोलोगे और पब्लिक भी उसको अच्छे से नहीं लेगी, क्योंकि तुम्हारे पास रीज़न नहीं है ना, तुम मानते नहीं थे आप। अगर आप बोले कि यार ये गुजराती लोग बड़े यार परेशान करते हैं, आपको लगता है जैसे मैं काठियावाड़ी पर जोक करता हूँ कि काठियावाड़ी से लोग बहुत परेशान करते हैं, मैं बहुत त्रस्त हूँ, तो क्या मैं सच में त्रस्त हूँ, हाँ हूँ, तो बोलना चाहिए। समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप मानते हैं तो ही
बोलना,
क्योंकि वो बोलने में मजा आएगा, और वो पब्लिक के पुलू के मैं ना के गड़े उतरे, वो फिर उनके दिमाग में बैठेगा कि नहीं बंदा बात तो सही कर रहा है, उसके चेहरे से लग रहा है कि ऐसा मानता है,
सब होता है
ऐसा होता है। और उसके बाद अपना रीज़न भी होता है ना विशाल भाई, कि काठियावाड़ी लोग बहुत खराब है, मैं बताता हूँ क्यों खराब है, देखो ऐसे करके मैं रीज़न देता हूँ, फिर खराब तो नहीं बोलना चाहिए, काठियावाड़ी इज़ वो लिसनिंग दिस, नहीं आई लव यू गाइस, लाइक बट लाइक रीजन्स है मेरे पास व्हाई दे आर अनोइंग, तो वो रीजन्स भी अपन बार बार बोलते हैं फिर, ताकि वो जस्टिफाई करे अपना जो सेंटेंस है वो। एक एक कॉमेडी इज प्योर मैथमेटिक्स, गणित है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, इससे कहना ये मानते हैं कि आप आज स्टेज पे गए, फिर 3 महीने बाद गए, फिर 4 महीने बाद गए, फिर 2 महीने बाद गए, और आप बोले मैं 1 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, अरे पर 1 साल में किया 4 बार खाली तो 1 साल से थोड़ी हुआ, तो अगर आप ये ऐसा तो है नहीं कि एक बार जिंदगी में सीख लिए फिर 6-8 महीने बाद या 1 साल बाद भी करेंगे तो उतना ही पावर होएगा, नहीं होता ऐसा, ये प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। एक अच्छा बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन भी अगर 1.5-2 साल तक स्टेज पे नहीं गया या 1 साल तक स्टेज पे नहीं गया, तो उसके बाद उसके पहले 5-6 ओपन माइक वो प्रैक्टिस में जाता है, ये अपने इम्प्रो जैसा है, इम्प्रो की प्रैक्टिस में, इम्प्रो कॉमेडी में आप 3-4 लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन जब नया शो रिहर्स करने बैठते हैं तो पहले रिहर्सल में इतना फनी नहीं निकलता है, क्योंकि वो मूड में वो माहौल में नहीं आए होते, फिर दूसरे तीसरे रिहर्सल से वी आर लाइक यार अभी सजेशन कुछ भी दो फनी तो निकल रहा है। तो ये वाली चीज है कि ये गणित है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, गणित में भी वो अपने को सूत्र आवड़तू है तो दाखला आवड़ी जाए वो जरूरी नहीं है, तो सूत्र आवड़तू है पर प्रैक्टिस करतू रहू पड़े, दैट मैटर्स अ लॉट इन स्टैंड अप कॉमेडी। बीइंग कंफर्टेबल इज नेसेसरी व्हाइल परफॉर्मिंग, इफ यू फील लाइक हैविंग वाटर और शेयरिंग प्लीज डू इट। आप कंफर्टेबल होने चाहिए
परफॉर्म करते हैं,
आपको लगे कि पानी पीना है तो 12 मिनट बाकी है, वो पानी की अगर आपको प्यास लगी है, अगर आप वो सहन करके कंटिन्यू 12 मिनट बोलोगे ना तो ध्यान उधर ही रहेगा। इससे अच्छा एक बड़ा जोक मारो, पब्लिक हंस रही है तब तक पानी की बोतल बाजू में पड़ी है पी लो। अगर आपको लगे कि यार ये पता नहीं क्यों खड़ा होना लेकिन मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे को नहीं पसंद आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो
बैठ के,
तो हाँ एक कुर्सी दीजिए, लिया कुर्सी लीजिए बैठ के बाद, जो लगता है कि यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ये करने से, मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा तो वो कर देने का, ज्यादा उसके बारे में सोचेंगे और 12-15 मिनट अभी परफॉर्म करना बाकी है तो वो 15 मिनट ध्यान उधर ही रहेगा। अगर आपको लगता है कि मेरी शर्ट बहुत ज्यादा टाइट है आज, ये स्लीव्स मैंने फोल्ड नहीं की है तो ये बहुत कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो माइक को स्टैंड पे लगाओ, स्लीव फोल्ड कर दो चालू शोज में, ये कंफर्टेबल लग रहा है अभी तो लग रहा है यार, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर परफॉर्मेंस टाइम पे लगे कि ये करना है
तो कर देने,
तो करना है यार वो तो, फिर
सोच मत सीटी मार,
हां ऐ शाबाश। डोंट रश टू फिनिश योर स्क्रिप्ट, 15 जोक स्टेज पे लेके गए तो 15 का 15 बोल के उतरना है, वो बात ऐसे दिमाग में लग के हमने फटाफट फटाफट फटाफट, ये 4 मिनट का टाइम है, 15 जोक है,
हंस मत।
हाँ अरे यार तुम क्या, तुम चौपड़ी पूरी करना है थोड़ी क्यों, तो लाइक तुम किस लिए गए थे, 15 जोक का टारगेट थोड़ी था, कंपनी थोड़ी है, कितना टारगेट खत्म नहीं किया, सैलरी काट लेंगे भैया।
भाई हंसने तो दे,
हाँ
में सुन ले पहले,
एक आध दो जोक रह गए तो रह गए,
नेक्स्ट टाइम,
नेक्स्ट टाइम, या तो ऐसा लगा कि अभी टाइम होने आया वो वाइंड अप बता दिया और अभी तो 6 जोक बाकी है तो डायरेक्ट लास्ट वाले जोक पे आ जाने का, पर वो 6 जोक को फटाफट करोगे तो वो पूरा लास्ट का आधा मिनट बिगड़ेगा ना। बीइंग इन अ लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल इन, शुरुआत करने के लिए ऑलवेज स्टार्ट विथ द लैंग्वेज विच इज कंफर्टेबल फॉर यू। अगर कोई बंदा गुजराती हिंदी इंग्लिश तीनों जानता है और वो कॉमेडी करियर शुरू कर रहा है, कॉमेडी करना शुरू कर रहा है, तो उसको शुरू कौन सी लैंग्वेज से करना चाहिए जिसमें वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। उसको आती 3 लैंग्वेज है लेकिन वो ज्यादा घर में क्या बोलता है, वो ज्यादा कंफर्टेबल किस में है, उसको सपने किस लैंग्वेज में आते हैं, उससे शुरू करना चाहिए।
हाँ।
फिर अपने अलग अलग लैंग्वेज, जैसे मैं गुजराती कॉमेडी शुरू किया था लेकिन फिर मैं हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी और इंग्लिश स्टैंड अप कॉमेडी की ओर भी जा रहा हूँ, पर मैं शुरू गुजराती से किया था क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। तो कोई भी लैंग्वेज आपको लगे कि भाई मैं इस तरह, हिंदी में भी ऐसा हो सकता है कि एक होता है हिंदी आपकी गांव वाली हिंदी, एक होता है आपकी शहर वाली हिंदी, तो आपको लगे कि वो गांव वाली हिंदी में मैं कंफर्टेबल हूँ तो आप शुरू उससे ही करो। एक आध दो चार परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं आएगा, 80% आएगा चलेगा, पर वो वाला हिंदी एक आध दो शब्द इतना बहुत भारी आता है तो पब्लिक हंस देगी शायद ये क्या बोल रहा है, पर धीरे 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 फिर कंफर्टेबल जोन से बाहर आके अभी तुमको जो लैंग्वेज पसंद आती है वो भी बोलता हूँ मैं, पर मेरे को शुरुआत मेरे से करने दो। या तो इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है कि 50 मिनट का परफॉर्मेंस है या 15 मिनट का, चलो 15 मिनट का परफॉर्मेंस है तो पहली 2 मिनट अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में बोलो, आज मैं परफॉर्म करने वाला हूँ हिंदी में लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ गुजराती में, तो मैं पूछूंगा हाउ मेनी गुजराती इन द हाउस, तो 2 लोग 3 लोग हाथ ऊपर किए या 10 लोग हाथ ऊपर किए 50 में से, एंड आई एम लाइक कि एक आधा लाइन गुजराती में बोल दिया वो 15 लोग ऐसे खाली, बाकी के 35 को पता नहीं चला, पर मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल हो गया ये, अभी ठीक है अभी हिंदी में बात करेंगे,
अभी हिंदी में बात करेंगे।
तो वो कंफर्ट होने के लिए, वो कंफर्टेबल फील करने के लिए स्टेज पे वो जरूरी है। ट्रेंडिंग टॉपिक ओनली वर्क विद पर्सनल ओपिनियन, मान लो कि अभी कुछ भी ट्रेंडिंग चल रहा है, नेहा धूपिया पे ट्रेंडिंग चीज चल रही है, अभी ट्रेंडिंग मीम चल रहे हैं, तो उसके ऊपर जोक करना ये 20 का अपना इवेंट है, आज 16 तारीख है, 20 तारीख तक नेहा धूपिया भी ट्रेंडिंग में चलेंगे, तो नेहा धूपिया पे क्या करना जरूरी है कॉमेडी, अगर आपके पास पर्सनल ओपिनियन नहीं है, अगर आपके आपके पास इसके बारे में कोई एक अलग थॉट नहीं है कि यार ये तो दुनिया को पता है कि इतना इतना हुआ लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मालूम अगर वो मैं क्या सोचता हूँ वाला पॉइंट अगर आपके पास है तो करना चाहिए,
तो करना चाहिए,
बाकी नेहा धूपिया का टॉपिक चल रहा है तो मैं भी उसके ऊपर कुछ बोल दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे फिर बात नहीं निकलती, कहना क्या चाहते हो भाई, बात में दम नहीं है ऐसा लगेगा। पर अगर नेहा धूपिया के बारे में सबको पता ही होगा, हाँ अभी मैं क्या सोचता हूँ मालूम उसके बारे में, ऐसा करके अगर आप बोलते हैं और आपके पास एक अच्छा पॉइंट है जो लोगों ने नहीं सोचा है तो उसके बारे में कॉमेडी करनी चाहिए। दूसरा है कि टॉकिंग अबाउट इट जस्ट बिकॉज इट्स इन हाइप, थिंक अगेन, ये उसका सिमिलर, उसका जुड़वा भाई है कि जो चीज मार्केट में चल रही है वही चीज अगर हम बोलना चाहें जस्ट इसके लिए कि हाइप में, तो डजंट मैटर, वो नहीं चल लेगा, वो नहीं काम करेगा, राइट। इट्स द एनर्जी ऑफ द रूम दैट लिफ्ट्स यू अप, इसके ऊपर बात तो डिस्कस करेंगे अपन के, कई बार ऐसा होता है कि आज रूम मतलब अपना जो वेन्यू है,
हाँ वेन्यू,
और एनर्जी मतलब वो एक माहौल होता है, वो एक उत्साह होता है लोगों में कि जो कई बार होता है पूरे शो में, कई बार पूरे शो में नहीं होता है,
नहीं
आपको लगेगा कि आज पूरा डाउन है, शो का एनर्जी पूरा डाउन है।
हाँ।
और कई बार ऐसा होता है कि अपने 2-3 परफॉर्मेंस देख के लगता है कि आज तो
मजा आ
रहा, कोई भी जाएगा चलेगा भाई, आज तो सब फूट रहा है।
हाँ।
तो वो रूम का एनर्जी होता है, तो कई बार क्या होता है कि रूम के एनर्जी के ऊपर अपना परफॉर्मेंस भी इफेक्ट करता है। अगर सब डाउन जा रहा है, मान लो कि 100 मार्क में से अगर सब 10, 12, 15, 5, 10, 12, 15 चल रहे हैं तो फिर आप भी मत सोचो कि मैं 80 चलेगा। फिर अगर आप 40 या 50 भी चल गए तो 10 गुना ज्यादा अच्छा चले हो दुनिया से, समझ रहे। और अगर मान लो कि पूरे रूम का एनर्जी 100 में से 90, 80, 85, 55, 95 चल रहा है तो इन दैट केस आप अगर आप 70, 60, 70 भी हो तो आपको इतना खुश नहीं होना है कि यार खाली मैं नहीं सब चल रहे थे, आज रूम का एनर्जी इतना ज्यादा था, तो वो बहुत मैटर करता है। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 मतलब वीक परफॉर्मेंसेज आ गए उसके बाद अपने स्टेज पर गए तो अपने को रूम का एनर्जी उठाना पड़ता है, क्या चल रहा है भाई लोग, ताली वाली बजाओ, सो तो नहीं गए, मूड लाते हैं कि भाई ये एनर्जी बहुत लो है, उठाओ इसको, तो वो उठाना पड़ता है कई बार, राइट। एक दो टिप्स और लेते हैं एट द एंड वाली, ज्यादा जो अभी एक दो वीक में लास्ट आई है ना ये। प्लेजरिज्म किल्स द कॉमेडियन इन यू, जोक उठाने में या जोक कहीं से कॉपी करने में या कहीं से प्रेरणा लेके उसके जैसा सिमिलियर जोक लिखने से अपने अंदर के कॉमेडियन को हम कहीं ना कहीं मार रहे हैं। मान लो कि किसी फेमस कॉमेडियन का, किसी फेमस कॉमेडियन का जोक आपने उठाया और आप बोल रहे हैं, तो पब्लिक पकड़ेगी कि यार ये इसका जोक है। व्हाट्सएप से भी उठाया पब्लिक पकड़ेगी। अगर कोई पुराना 50 साल पहले 60 साल पहले का कोई जोक है किसी कॉमेडियन का और वो उसको लैंग्वेज बदल दिया, उसका कंटेक्स्ट बदल दिया, उसको थोड़ा सा उसका आइडिया लेके उसके जैसा जोक करने की किया ताकि कोई पकड़े नहीं, तो ये चीज भी गलत है। अब कैसे गलत है? दो तरीकों से गलत है। पहला एथिकली, एथिकली मतलब मेरा उसूल से गलत है,
उसूल से
कि यार ये मैं अंदर तो पता है ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये मेरा जोक नहीं है। तीन चीजों से गलत है। चलो पहला तो उसूल से गलत है, दूसरा है वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उसमें, कि अगर तालियां बज भी गई ना तो अंदर से दिल से खुशी पता नहीं क्यों महसूस नहीं होगी कि यार अल्टीमेटली था तो नहीं, मेरा तो नहीं था, वो दिल से खुशी महसूस नहीं होती कभी। और तीसरा पॉइंट है कि आप अपने अंदर के कॉमेडियन को मार रहे हैं अपने, तो अंदर से फिर खुद लिखने की इच्छा ही कभी नहीं होगी। अंदर जो आदमी बैठा है वो खुद लिखने की ताकत रखता है ना, विशाल राठौड़ खुद भी लिख सकते हैं, पर वो अगर यही चीजें सोचेंगे तो वो लिख नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी हो, अमित खुआ हो, विशाल राठौड़ या हो, या ये पॉडकास्ट सुनने वाला कोई भी एस्पायरिंग कॉमिक हो, प्लेजरिज्म हर तरीके से गलत है, उसूल से भी गलत है, वर्क सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रहा है, और तुम अपने अंदर के आर्टिस्ट को भी कहीं ना कहीं दफना रहे हो। तो कभी भी किसी का जोक नहीं लेना चाहिए, कभी भी किसी का स्टाइल नहीं लेना चाहिए, कभी भी किसी जोक का कंटेक्स्ट लेके उसके जैसा दूसरा जोक बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं, कम लिखो, बहुत फ्रीक्वेंटली ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन जो लिखो खुद का लिखो, वो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। एक आधा लास्ट लेते हैं कि इनोसेंस हेल्प्स फिक्शन वर्क वेरी वेल। कई बार ऐसा होता है कि फिक्शन बात कर रहे हो आप, फिक्शन मतलब कि जो या तो हुआ ही नहीं है या तो हो ही नहीं सकता।
फिक्शन ऐसे
हाँ, जैसे अगर आप कोई बोलो कि यार ये 6 महीने का बच्चा था मेरे सामने घूर रहा था, मैं बोला क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं बे। अभी वो 6 महीने का बच्चा है, कुछ नहीं बे नहीं बोलेगा, वो बोल ही नहीं सकता। अभी ये फिक्शन नहीं, अभी ये तो नॉनसेंस है। पर ये भी जोक बन जाता है कई बार, इस पर भी पब्लिक हंसती है, क्योंकि अगर आपके चेहरे पे आपको इनोसेंस, इनोसेंस मतलब भोलापन, कि मैं उसको बोला, मैं क्या है वो 6 महीने का बच्चा उसको बोला, मैं कुछ नहीं बे, पब्लिक हंस लेती है। वो बच्चा नहीं बोल सकता उसके ऊपर नहीं हंस रही है, वो आपके भोलेपन पे हंस रही है। तो कई बार ऐसा होता है, कमलेश भाई सूरज भाई के जोक्स में हमने काफी बार ये नोटिस किया है, और हमने बात भी हुई थी एक बार के ये बहुत भोलेपन से बोलता है ना, इसलिए चल जाता है। कई बार अपने को पता भी चल जाता है कि यार ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ होगा, पक्का नहीं हुआ होगा, या तो कई बार तो पता चल ही जाता है कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये क्या भाई ये नॉनसेंस है। पर फिर भी वो जोक सुनने में बड़ा मजा आता है, उसका एकमात्र रीजन है इनोसेंस, कि वो जिस इनोसेंस से, जो भोलेपन से बोलते हैं ना, वो भोलापन कहीं ना कहीं बह जाता है अपने को। ऐसा है। बाकी सुनाइए आप कुछ।
और तो सब बढ़िया है।
बाकी ये बहुत प्रैक्टिस वाला मैटर है स्टैंड अप कॉमेडी, कहीं ना कहीं ये टिप्स अपन हर वीक पे ला रहे हैं, अभी इसको और फ्रीक्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हैशटैग स्टैंड अप टिप्स कैफे कॉमेडी या हैशटैग कैफे कॉमेडी स्टैंड अप टिप्स, दोनों में से कोई भी हैशटैग आप लिखेंगे तो आपको ये स्टैंड अप कॉमेडी के टिप्स मिलेंगे। @ कैफे कॉमेडी वर्कशॉप्स के हैंडल्स पे आपको ये टिप्स मिलेंगे, और ये टिप्स से हम लोग कहीं ना कहीं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें एस्पायरिंग कॉमिक्स के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, कि यार सबको पता है ये जितनी भी चीज़ें आप हम लोगों ने आज इस पॉडकास्ट में डिस्कस की है, सारी की सारी सबको पता ही थी, कुछ ऐसा नहीं था कि ज्ञान दे दिया हमने, पर ये छोटी छोटी चीजें ऐसी है कि अभी ज्ञान लग रही होगी सबको, या आपको या मुझे, क्योंकि ये चीजें हमको पता थी लेकिन हमने कभी नोटिस नहीं की थी कि यार ये बात इतनी इंपॉर्टेंट भी हो सकती है। बाकी बहुत छोटी सी बात है कि यार अगर वो हंस रहे हैं तो उसको हंसने दो, तुम स्क्रिप्ट खत्म करने नहीं गए हो, तुम हंसाने गए हो, ये सबको पता है ये चीज, पर ये इस एंगल से कभी हमने सोची नहीं थी। इस एंगल से मेरा मतलब है कि इतना इंपॉर्टेंट भी हो सकता है ये, वो एंगल कभी सोचा नहीं था। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं ये टिप्स में डालने की कोशिश करते हैं। आपको भी अगर ऐसा लगे खुद के लिए कि यार ये अभी मेरे दिमाग में थॉट आया है, बहुत बहुत बेसिक थॉट है लेकिन मेरे को खुद को याद कराना पड़ेगा बार बार, तो कहीं लिख लो, वो खुद के लिए खुद भी टिप लिख लो कहीं पे,
अगर आप गए और आपने बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी वो एक जोक बोल दिया, तो रात में घर जाके डायरी में कहीं पे लिख दो कि विशाल भाई ऐसा मत करो, खुद को बोल दो, तो कहीं ना कहीं वो टिप बन जाता है, कहीं ना कहीं वो 2 महीने बाद जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि यार ये मिस्टेक तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात है, मेरे को मालूम है नहीं करनी चाहिए फिर भी क्यों कर रहा हूँ। तो धीरे 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 वो चीज़ सॉल्व होने की कगार पे आएगी। सो आई गेस दैट्स इट, दिस इज अमित एंड विशाल, अमित खुआ एंड विशाल राठौर। विशाल भाई टाटा बोल दीजिए।
बाय
बाय बाय बोल दिया, मैंने भी बाय बाय बोल दिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, टाटा बाय बाय। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, त्यां सुधी सब्बा खैर, अब्बा गैर, तम तमारा गैर, हमें हमारा गैर है, बढ़िया।